दिन भर 6 जनवरी दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। उत्तरी कोरिया का हाइड्रोजन बम परीक्षण का दावा, पूरी दुनिया में निंदा।
The Democratic People's Republic of Korea announced today it had carried out a hydrogen bomb test.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता अमित जोगी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। दुनिया जहान में आज नजर होगी अपने विवादास्पद बयानों से चर्चा में आए अमरीकी राष्ट्रपति पद में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी पाने की कोशिश कर रहे बड़ बोले डोनाल्ड ट्रंप पर।
एक कैजुअल जो तरीके से जो लोग बातें करते हैं भारत में, जो बैठ के चाय की दुकानों पे लोग बात करते हैं जिसमें कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं होता, लेकिन लोग वो बातें ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कैजुअली, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी यही है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वैभव श्रीवास्तव से। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण की दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की है। चीन, जो उत्तर कोरिया का सबसे शक्तिशाली सहयोगी है, उसने भी कहा कि वो इस परीक्षण के सख्त खिलाफ है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक उकसाने वाला कदम है, तो दूसरी ओर रूस ने कहा कि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सख्त उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख युकिया मानाव ने कहा,
The Democratic People's Republic of Korea announced today,
उत्तर कोरिया ने आज परमाणु परीक्षण करने की घोषणा की है। अगर ये बात सच है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मैं उत्तर कोरियाई सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्तावों का पालन करे। हम सभी देशों के साथ शांति प्रस्ताव को रखने की ओर कार्य करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख युकिया मानाओ के शब्द। इराकी विदेश मंत्री इब्राहिम अल जफारी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब में चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए उनका देश मध्यवर्ती की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ने दिया गया तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। शिया मुसलमान बाहुल्य वाला इराक अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ईरान और सऊदी अरब से घिरा हुआ है और बढ़ते तनाव की वजह से उसे काफी दिक्कतें आ रही हैं। कोको कोला कंपनी ने रूस और यूक्रेन के लोगों से माफी मांगी है। नए साल के एक इश्तेहार की वजह से दोनों देशों में काफी गुस्सा था। सोशल मीडिया वेबसाइट पर नए साल की बधाई देते हुए कोको कोला ने रूस द्वारा कब्जा किए गए क्राइमिया को नहीं दिखाया था। रूस में गुस्सा हुए लोगों को देख कोको कोला ने जब क्राइमिया को रूस के नक्शे में दिखाया तो क्राइमिया के लोग गुस्सा हो गए। कोको कोला ने यह इश्तेहार हटा दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के आंतरिक मंत्री थॉमस डे मैजियर ने पुलिस की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने नए साल के जश्न के वक्त औरतों पर हुए हमलों और बदतमीजी के मामले को ढंग से नहीं संभाला। ये वारदात जर्मनी के कोलोन में हुई जब लगभग 100 औरतों के साथ एक गुट ने बदसलूकी की। अब तक केवल कुछ ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आंतरिक मंत्री ने कहा कि ये बताने की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हमलावर अमरीकी या अरब दिखते थे, परंतु इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बाहर से आने वाले शरणार्थियों पर गलत आरोप लगाए जाएं। तेल के दाम पिछले 11 सालों में सबसे कम होकर $35 प्रति बैरल पर आ गए हैं। ज्यादा आपूर्ति की वजह से ब्रेंट ऑयल का दाम 2014 के मध्य में चल रहे अपने दामों के एक तिहाई पर आ गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। उत्तरी कोरिया ने ऐलान किया है कि उसने अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि परमाणु बम से कहीं ज्यादा घातक है। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने इस खबर की पुष्टि की है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के दावों की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। दुनिया भर के नेताओं ने उत्तर कोरिया के ऐलान की आलोचना की है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के इस कदम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक भड़काने वाला कदम बताया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए अमर शर्मा से।
अमरीकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर कोरिया में रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता के झटके रिकॉर्ड किए थे। हालांकि दक्षिण कोरिया के मौसम विभाग के मुताबिक इन झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 थी। जिस जगह पर ये झटके रिकॉर्ड किए गए हैं वो उस जगह के पास है जिसका इस्तेमाल पहले परमाणु परीक्षण के लिए किया जाता था। माना जाता है कि 2006 से लेकर अब तक उत्तर कोरिया ने पुनगेई री परीक्षण स्थल में 3 बार भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। चीन और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के संकेत हैं कि इसकी वजह प्राकृतिक नहीं है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया हो। उत्तर कोरिया के दावों पर कुछ विशेषज्ञ संशय जता रहे हैं। अमेरिका में रैंड कॉर्पोरेशन में विशेषज्ञ ब्रूस बेनेट कहते हैं,
The bang they should have gotten would have been 10 times greater.
जो दावा वो कर रहे हैं उसके हिसाब से तो 10 गुना बड़ा धमाका होता। इसलिए हाइड्रोजन बम के परीक्षण की बात कर रहे किम जोंग उन या तो झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने बस कुछ ज्यादा असरदार फिशन हथियार का प्रयोग किया है या फिर इस परीक्षण के हाइड्रोजन वाला हिस्सा वास्तव में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया।
ब्रूस बेनेट के शब्द। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के दावों को लेकर भले ही संशय हो लेकिन विश्व भर के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाई ने कहा है कि ये एक उकसाने वाला कदम है और उत्तर कोरिया को इसका जवाब देना होगा।
अब हमारी सरकार को उत्तर कोरिया के किसी भी उकसावे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने होंगे। हम वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि अलग थलग पड़ा ये देश अपने नए परमाणु परीक्षण के लिए अपने अंजाम तक पहुंचे।
पार्क ग्यून हाई के शब्द। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जाएगा।
उत्तर कोरिया का ये परमाणु परीक्षण हमारे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्तावना का उल्लंघन है और ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार की दिशा में किए गए कामों के लिए गंभीर चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने के नाते हम अमरीका, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस के साथ मिलकर कुछ ठोस उपाय करेंगे जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्रवाई कर सके।
शिंजो आबे के शब्द। भारत ने भी उत्तर कोरिया के इस परीक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है,
ये गहरी चिंता का विषय है कि उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध काम किया है। हम उत्तर कोरिया से अपील करते हैं कि वो ऐसी गतिविधियों से बचें जिससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। उधर चीन की यात्रा पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु बम के परीक्षण की निंदा की है और कहा है कि ये सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का खुला उल्लंघन है। उत्तर कोरिया की करीबी सहयोगी चीन ने भी इस परमाणु परीक्षण का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि वो उत्तर कोरिया के राजदूत और अधिकारियों को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर आपात बैठक बुलाई है।
उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत का पठानकोट एयरबेस पर चरमपंथी हमले पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर कई तरह की आलोचना सामने आ रही है। क्या सुरक्षा बलों की मौतों को कम किया जा सकता था? आखिर चरमपंथियों को काबू करने में और उन्हें खत्म करने में इतना वक्त क्यों लगा? विनीत खरे ने मोहाली में रिटायर्ड मेजर जनरल राज मेहता से बात की और पूछा, क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ऑपरेशन की कमान देना सही कदम था? क्योंकि आलोचना हो रही है कि जब स्थानीय परिस्थितियों से वाकिफ सेना के दस्ते पठानकोट में ही मौजूद थे तो आखिर एनएसजी को ऑपरेशन की कमान क्यों दी गई?
ये जो एनएसजी है ये एक्चुअली वर्ल्ड क्लास है, बट फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इनका हॉस्टेज टेकिंग में, चाहे वो रोड बेस्ड हो, रेल बेस्ड हो, एयर बेस्ड हो, एयरपोर्ट बेस्ड हो, दे आर ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी गुड। हु आर दीज पीपल? दे आर एक्चुअली मेनली आर्मी पर्सनल, सम फ्रॉम द नेवी, सम फ्रॉम द एयरफोर्स, सम फ्रॉम द सीआरपीएफ, जिनकी जबरदस्त काबिलियत है इस स्पेसिफिक काम के लिए। पर जो सिचुएशन जिसके लिए ये भेजे गए हैं वो भी इन एडवांस, वो तो ऐसी थी ही नहीं। इसका मतलब है दैट दो दे आर हाईली ट्रेन्ड, देयर ट्रेनिंग डिड नॉट हेल्प देम वेरी मच इन कैरिंग आउट दिस ऑपरेशन। और जिस तरीके के नुकसान हुए हैं जाहिर करते हैं कि जो हमारी स्पेशल फोर्सेस थी शायद उनमें ये काबिलियत थी ही, क्योंकि उनका तो रोजमर्रा का काम है। तो तकलीफ ये है भाई साहब कि जब एक टेररिस्ट की मौत हो जाती है तो फौज के लिए, जिसको मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने भी कई मुकाबले देखे हैं जम्मू कश्मीर में, वो पिछले करीब 15 सालों से अपनी बॉडी के साथ या तो एक ग्रेनेड रख देते हैं जिसका पिन निकला हो, ताकि जब उनकी बॉडी के साथ छेड़खानी हो वो ग्रेनेड फट जाता है। अभी ये बातें तो उसको पता होंगी जिसके रोजमर्रा का काम है ना, एनर्जी के वास्ते ऐसी ट्रेनिंग है नहीं। जब हम ऐसी बॉडीज को हैंडल करते हैं तो पहली बात तो हम दूर से करते हैं, दूसरी बात हम ढकाव लेते हैं या कवर लेते हैं, और तीसरी बात ऐसी बॉडी को हिलाने के लिए एक रस्सी फेंकी जाती है कांटे के साथ, जिससे बॉडी को हिलाया जाता है ताकि अगर नुकसान हो तो रस्सी का होगा, इंसान को क्यों होना चाहिए। स्पेशल फोर्सेज, आर्मी स्पेशल फोर्सेज ने किया होता तो ऐसी गलती नहीं होनी थी। एक ऑपरेशन 36 घंटे चले जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं, या 80 घंटे चले जो कैलेंडर क्लॉक टाइम था, इट्स टू मच ऑफ टाइम। इस ऑपरेशन को तो 1.5-2 घंटे में लपेट देना था।
एक सवाल और उठ रहे हैं कि अगर इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो अटैक्स होते हैं सर, उसमें कमांड किसके हाथ में हो? क्या ये जो ये वाकया हुआ है, इससे ये भी थोड़ा एक ये चीजें क्लियर आ गई हैं कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कमांड किसके हाथ में हो, आर्मी के हाथ में हो, एनएसजी के हाथ में हो?
असलियत में ये मामला एयरफोर्स का था ना, एयरफोर्स का होने की वजह से उनके जो गरुड़ कमांडोज हैं, असलियत में उनके हाथ में पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि उनको लोकल एरिया मालूम था, कैंप के या जो गैरिजन है एयरबेस है उसके चप्पे चप्पे को जानते थे, वहीं ट्रेनिंग करते हैं, वहीं जीते हैं। तकलीफ खाली यही है कि शायद क्योंकि वो नई फोर्स है, इतना कॉन्फिडेंस लेवल ना हो, या फिर दिल्ली का फैसला होगा कि आप तो खैर करोगे सो करोगे, हम एनर्जी को भेज देते हैं। अभी इसी एस्केलेशन की वजह से बाद में देखिए क्या हुआ, वहां पर पंजाब पुलिस भी पहुंच गई, इंडियन आर्मी भी पहुंच गई, स्पेशल फोर्सेस भी पहुंच गई, एनएसजी भी पहुंच गई, डीएससी तो वैसे ही थी और गरुड़ा भी थे, तो टोटल 6 लोग पहुंच गए वहां पर, और अलग तबकों के लोग। इनके बीच में एक माई बाप तो होना चाहिए था, आइंदा आने वाले टाइम के लिए बेस्ट एजेंसी वही होनी चाहिए जो लोकल हो और जिसको बेहतरीन तजुर्बा हो।
ये जो पूरी घटना हुई, इससे जो भारतीय आर्मी की इमेज है उस पर क्या असर पड़ा है?
बिल्कुल असर जीरो पड़ा है भाई साहब, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस बेसिकली जो इनकी आउटलुक है वो पॉजिटिव है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। मेरा करीब करीब 40 साल का फौज का तजुर्बा ये कहता है कि आदमी गलतियों से हमेशा ज्यादा सीखा है, सक्सेस थोड़ा दिमाग खराब कर देती है।
रिटायर्ड मेजर जनरल राज मेहता से बात कर रहे थे विनीत खरे। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार को मैदान छोड़ने के लिए दिए करोड़ों रुपए के कथित लेनदेन का टेप सार्वजनिक होने के मामले में अमित जोगी को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भी 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हालांकि अमित जोगी ने कहा है कि वो इस निर्णय के खिलाफ पार्टी आलाकमान के समक्ष अपील करेंगे। रायपुर से आलोक पुतल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में 13 सितंबर 2014 को बस्तर के अंतागढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और इस सीट से भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई थी। पिछले बुधवार को इसी चुनाव से संबंधित कथित बातचीत के टेप सार्वजनिक हुए थे। इस टेप में कथित रूप से मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी रिश्तेदार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता अजीत जोगी और उनके बेटे विधायक अमित जोगी, विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने वाले मंतूराम पवार के बीच कई करोड़ के कथित लेन देन का उल्लेख है। इस टेप के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह और तेज हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जहां पार्टी ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस दी थी, वहीं उनके बेटे विधायक अमित जोगी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने एक बैठक के बाद विधायक अमित जोगी को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अमित जोगी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी चूंकि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की इकाई ने अजीत जोगी को भी 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर करने की अनुशंसा AICC को भेज दी। अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित करने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने कहा कि इस निर्णय से पार्टी की छवि में सुधार होगा।
हमने इस मामले में पहले भी निर्वाचन आयोग को पत्र दिया था, जंतर मंतर में धरना दिया था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इस प्रकार से जो गठबंधन है उसको देख के पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है कि अमित जोगी को 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए और साथ ही अजीत जोगी जी को 6 साल के अनुशासन की सिफारिश की जाए।
लेकिन कांग्रेस से बाहर किए गए विधायक अमित जोगी ने इसे पार्टी का सामंती फैसला करार दिया है।
मैं इस प्रकार के सामंतशाही साजिश से डरने वाला नहीं हूँ। इसके पहले भी हमारा परिवार प्रदेश के गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए लड़ते आया है। अब मैं और ताकत के साथ उनकी आवाज बनने का, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करूंगा।
छत्तीसगढ़ में विधायक अमित जोगी के निष्कासन और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निष्कासन की अनुशंसा का असर अभी से नजर आने लगा है। राज्य के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेकिन कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का कहना है कि ऐसे इस्तीफों से फर्क नहीं पड़ने वाला है।
किसी के पास जन समर्थन है और वो समर्पित भाव से जिस दल में वो जुड़े हुए हैं उस दल के लिए काम आ रहा है, तो ऐसे जन समर्थन के अभाव में ऐसे व्यक्ति के दूर होने से उस पार्टी को, उस राजनीतिक दल को, उस संगठन को नुकसान पहुंचेगा।
पार्टी के ताजा फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितनी मजबूत होगी और उसकी छवि कितनी सुधरेगी यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस कड़ाई के साथ निर्णय लिया है उससे माना जा रहा है कि इस निर्णय को केंद्रीय नेतृत्व की भी सहमति है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में राजनीति की समझ रखने वाले इस निष्कासन को राज्य में एक नई पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया की तरह देख रहे हैं। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। एक हफ्ता पहले ऑड इवन योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी आई है। दिल्ली सरकार ने आंकड़ों के सहारे कहा है कि इसमें भारी कमी आई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि इस नियम को एक हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते तक लागू करने की क्या जरूरत थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो शुक्रवार को अदालत को बताए कि किस तरह नए नियम के कारण प्रदूषण कम हुआ। दिल्ली में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र में प्रदूषण के विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय से हमारे साथी जुबैर अहमद ने पूछा कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन विषाक्त हवा में भी कोई सुधार हुआ है?
ये आप कंबशन सोर्सेस यानी फॉसिल फ्यूल सोर्सेस को जितना आप टारगेट करेंगे, कम से कम करेंगे किसी भी मेजर से, मैं नहीं कहता कि ऑड एंड इवन हो, परंतु ओवरऑल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम ही पुख्ता करना पड़ेगा आपको। ये जो खामियां हमें पता चल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो हमें दुरुस्त करनी होंगी। जैसे अभी भी काफी कनेक्टिविटी की इश्यूज हैं, फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो ये जो सरकार आंकड़ा जमा कर रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में भी, ये एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हम उसको दुरुस्त कैसे करें।
तो वो तो फिलहाल पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त कर सकते, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है।
अच्छा, देखिए उसमें वो होता है कि जैसे कि पेरिस स्मॉग के दौरान हुआ था, उसमें उन्होंने बस कनेक्टिविटी अच्छी कर दी थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया था उन्होंने। और दूसरा ये है कि बसेस की जो जाम में फंसने की आप मिक्स ट्रैफिक में अलाउ करते हैं, उसके बजाय आप जो लेफ्ट लेन में बसें चल रही हैं उसको आप सुनिश्चित कर दीजिए कि उसमें बसें चलेंगी, और जो लेफ्ट टर्निंग व्हीकल्स है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, तो गति आप बसेस की मिल गई।
तो 15 तारीख के बाद दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो स्कीम बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या अगर फिर से सड़कों पे वही उसी तरह की ट्रैफिक वापस,
वो वापस आ जाएगी स्थिति। इसीलिए दिल्ली सरकार को अभी जो शिफ्ट मिल रहा है इस दौरान, वो जो शिफ्ट हो रहा है लोगों का प्राइवेट व्हीकल से इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अभी सुविधाएं नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स में आप कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु ये शिफ्ट रिटेन किया जा सकता है। जैसे कि ये सवाल भी आ रहा है कि भाई आप फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएं, और दूसरा कई रैक्स आप और जोड़ सकते हैं, जैसे कई ट्रेन जैसे मेट्रो के हैं अभी अंडर कैपेसिटी में चल रहे हैं। बसेस की कनेक्टिविटी आप देखेंगे कि लास्ट फर्स्ट माइल लास्ट माइल में बिल्कुल ही पुअर है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में कि आपको 1 किलोमीटर या पहले जो 2 किलोमीटर है उसमें आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती।
लेकिन क्या ये संभव है कि इसमें से कुछ मेजर्स को जारी रखे, जैसे कि ऑड के दिन इवन गाड़ियां अगर आ रही हैं तो उनको 2,000 रुपया कंजेशन चार्ज लगा, जैसे लंदन में है कंजेशन फी, उस तरह से कंट्रोल करें।
व्यवस्था करने के पहले देखिए, कंजेशन टैक्स लगाने के पहले पहली चीज आपको करनी होती है पार्किंग रेगुलेट करना पड़ता है, यानी
पार्किंग के दाम भी बढ़ा दीजिए।
हाँ, आप बढ़ाइए, उनकी सप्लाई नियत कीजिए। अभी क्या है कि आप प्राइस बढ़ा देते हैं पर ये तय नहीं होता कि कहाँ तक पार्किंग हो सकती है।
टू व्हीलर्स को भी शामिल करना चाहिए।
हाँ, वो तो करना ही चाहिए क्योंकि ऑड एंड इवन प्राइवेट व्हीकल्स में आप लागू कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन तो होने ही नहीं चाहिए। आपका ये मैकेनिज्म चेंज करके इसको लॉन्ग टर्म आप कैसे कैरी कर सकते हैं ऑड एंड इवन के अलावा भी, वो अब सोचने का वक्त आ गया है।
और उसमें कामयाबी मिली तब कामयाब रहा सब कुछ, नहीं तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन।
हाँ, नहीं तो 15 तारीख के बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी।
सीएससी के विवेक चट्टोपाध्याय से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इस सिलसिले में जो एक नाम शायद सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अपने बयानों से वो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। ट्रंप को खारिज करने वालों की भी कमी नहीं है वैसे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी पाने की रेस में वो सबसे आगे हैं। क्या हास है ट्रंप में, सुनिए इस बार दुनिया जहान में अशोक कुमार से।
दुनिया जहान। प्लीज वेलकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर डोनाल्ड जे।
डोनाल्ड जे ट्रंप इज कॉलिंग फॉर ए टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम्स।
डोनाल्ड जे ट्रंप कहता है कि अमेरिका में मुसलमानों के आने पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए।
They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama.
उन्होंने IS को खड़ा किया। हिलरी क्लिंटन ने IS को खड़ा किया ओबामा के साथ मिलकर।
We won't be using a man like Secretary Kerry.
हम विदेश मंत्री कैरी जैसे आदमी को नहीं रखेंगे जो 72 साल की उम्र में साइकिल रेस में हिस्सा लेता है और गिर जाता है और अपनी टांग तोड़ा बैठता है।
I'm really rich. I'll show you that in a second.
मेरे पास तो बहुत पैसा है।
I think I am a nice person. People that know me.
मुझे लगता है कि मैं बढ़िया आदमी हूँ।
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
मैं नौकरियां देने वाला अब तक का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति बनूंगा।
डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बातें। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सियासत का आज वो चेहरा है जिसकी हर तरफ धूम है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में वो सबसे आगे हैं। अपनी बातों से वो अपने समर्थकों का दिल तो जीत ही रहे हैं, लेकिन जो लोग ट्रंप की बातों को बेतुका कहकर खारिज कर रहे हैं वो भी उनकी बातों पर चटखारे लेने से नहीं चूकते। आखिर ऐसा क्या करिश्मा है डोनाल्ड ट्रंप में?
जैसी विश्व की इस वक्त दशा है उसके हिसाब से लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा हो वो सही है। एक मतलब कैजुअल जो तरीके से जो लोग बातें करते हैं, इवन भारत में जो बैठ के चाय की दुकानों पे लोग बात करते हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वजन नहीं होता, लेकिन लोग वो बातें ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कैजुअली, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी यही है और लोग उसके साथ आइडेंटिफाई मैं नहीं कहूंगा कि कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मजा आ रहा है।
ये हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा जो विश्व मामलों की भारतीय परिषद ICWA में अमरीकी मामलों के जानकार हैं और बीते हफ्ते ही अमरीकी दौरे से लौटे हैं। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति ये है कि बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं मतदाताओं के बीच वो कहीं न कहीं उनकी पैठ को तो दिखाता ही है। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में विश्व मामलों के जानकार डॉक्टर मुक्तदर खान।
यूं कहिए कि 1/3 जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बिल्कुल ऐसे ही सोचती है जैसा डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं, या रिवर्स कहिए, जिस तरह उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अमेरिका में आने से बैन कर देना चाहिए, मेक्सिको के और अमेरिका के बीच में दीवार बना देनी चाहिए और मेक्सिको को पे करना पड़ेगा। मतलब ना तो ये बातें रैशनल है ना ये पॉसिबल है। अगर वो प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो ये चीजें नहीं कर सकते वो।
लेकिन ट्रंप की कही बातें सिर्फ अमरीकी सियासत तक सीमित नहीं है। सोमाली चरमपंथी गुट अल शबाब ने बीते दिनों अपने एक वीडियो में ट्रंप के मुसलमान विरोधी बयान का हवाला देते हुए लोगों से जिहाद के लिए आगे आने को कहा, बावजूद इसके ट्रंप अपने बयान पर कायम हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के लिए ट्रंप कहीं न कहीं एक सिरदर्द बन रहे हैं। مقتدر خان بتاتے ہیں.
ریپبلکن پارٹی اتنی پریشان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن نامنی بن جاتے ہیں تو شاید ریپبلکن پارٹی کے جو ایوانجیلیکل سپورٹرز ہیں, مثلا جو کرسچن مذہب پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں, اور جو ماڈریٹ سینسیبل ریپبلکنز ہیں, اگر وہ ووٹ ڈالے نہیں آئے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے, تو نہ صرف ریپبلکنز وائٹ ہاؤس ہار جائیں گے بلکہ سینٹ بھی ہار جائیں گے.
لیکن ٹرمپ کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حال ہی میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے چناؤ پرچار پر ہر ہفتے 20 لاکھ امریکی ڈالر یعنی قریب 13 کروڑ روپے خرچ کریں گے. جیسا کہ خود ٹرمپ نے کہا, وہ بہت ہی امیر آدمی ہیں. وہ ریئل اسٹیٹ کاروباری ہیں, بڑے نویشک ہیں, ٹی وی پرسنالٹی ہیں, لیکھک ہیں اور اب ایک راجنیتا بھی. ان کی کل سمپتی 10 ارب امریکی ڈالر کے آس پاس مانی جاتی ہے. اب تک وہ 3 شادیاں کر چکے ہیں اور ان کی موجودہ پتنی میلانیا ٹرمپ 45 سال کی ہیں, جبکہ ٹرمپ 70 سال کی عمر کو چھونے والے ہیں. لیکن عام لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہی جاننے کی کوشش کی نیو یارک میں ہمارے ساتھی سلیم رضوی نے کچھ لوگوں سے.
ڈونلڈ ٹرمپ کس لیے اس طرح بات کرتے ہیں, اچھے نہیں, اور مسلمان ادھر نہیں آنا ہے, اچھے نہیں. وی لو امریکہ. امریکہ کس لیے ہم لوگ آیا, اچھی زندگی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اچھے لائف کے لیے. سو اس کو سمجھنا پڑے گا.
ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ وہ راجنیتی سے زیادہ بات کرتے ہیں, زیادہ وہ جو بولتا ہے وہ تو صحیح نہیں ہے, وہ نہیں آئے گا. وہ لمبا لمبا بات کرتے ہیں, مگر ابھی اس کو جو بات بولتا ہے سب دیکھتے ہیں, سن رہے, مگر ووٹ جب ہوئے گا وہ نہیں آئے گا.
جس حساب سے ان کا غصہ وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ چیز ہے, یہ پولیٹکس میں جو ہے سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ دماغ کو جو ہے نا ٹھنڈا کر کے چلے.
They still prefer him. That's why he's still on the top. ابھی ان کی ہوں گی نیو ہیمپشائر میں اور اوہایو میں ہوئے گی ان کی الیکشن, تو پتا چلے گا کہ where he stands.
ابھی جو ایک بات ٹرمپ کے حق میں جا رہی ہے وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی کے بھیتر امیدواری کے اتنے سارے دعوے دار ہیں. ایسے میں کٹر سوچ رکھنے والے متداتا جہاں پوری طرح ٹرمپ کے پیچھے لامبند ہیں, وہیں انہیں ناپسند کرنے والے متداتا 11 امیدواروں کے بیچ بٹے ہیں, جن میں پورو راشٹرپتی جارج بش کے بھائی جے بش, بین کارسن, سینیٹر ٹیڈ کروز اور مارکو روبیو جیسے لوگ شامل ہیں. ایسے میں جیسے جیسے امیدواری کے دعوے دار ریس سے ہٹتے چلے جائیں گے تو سمبھو ہے کہ ٹرمپ ویرودھی مت ایک جٹ ہوتے چلے جائیں. راہل مشر کہتے ہیں,
مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرمپ آگے آنے والے سمے میں اتنی تیزی سے جتنا انہوں نے ان کا گراف ابھی پاپولرٹی گراف اوپر گیا ہے یہ اتنا ہی زیادہ رہے گا. تو امریکن جنتا جو ہے وہ ہر دیش کی طرح پبلک سب جانتی ہے, اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کس سے صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے اور انگیج ہونا ہے سر ٹی وی پہ پرائم ٹائم شو میں, یا کس کو جو ہے دیش چلانے کا موقع دینا ہے.
یہی نہیں, امریکہ میں اس بات کی بھی بہت چرچا ہے کہ اگر ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امیدواری مل گئی اور ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بنتی ہیں تو پھر کلنٹن کے لیے کوئی مقابلہ ہی نہیں بچے گا. یا کہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی تو دعا مانگ رہی ہے کہ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار بن جائیں, لیکن پاسا الٹا بھی پڑ سکتا ہے. کیسے, مقتدر خان سے سنیے.
یہ سیناریو دیکھیں آپ, کہ آپ اکتوبر کا لاسٹ ویک ہے اور ساری میڈیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ ہلری کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ کو 20 پوائنٹ سے ہرا دیں گے اور ریپبلکن پارٹی سینٹ بھی ہار جائے گی, اور اسی دن کوئی امریکن مسلم یا کوئی مسلم ریفیوجی جیسا سین برنارڈینو میں جس طرح سے انہوں نے فائرنگ وائرنگ کی, اس طرح سے اگر کوئی واردات پیش کر دیتا ہے تو پھر پورا تختہ پلٹ جائے گا, وہ جیت جائے گا پھر ڈونلڈ ٹرمپ, الیکشن بھی جیت جائے گا, سب کچھ جیت جائے گا. بس وہ ایک فرائٹنگ سیناریو ہے.
ایک طرح سے دیکھیں تو وائٹ ہاؤس کے لیے ابھی ریس اوپچارک طور پر شروع بھی نہیں ہوئی ہے. اسے تبھی شروع مانا جائے گا جب دونوں بڑی پارٹیوں کے بھیتر اگلے مہینے سے امیدواری پانے کے لیے پرائمری چناؤ شروع ہوں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ پر پہلے ہی چناوی رنگ چڑھ چکا ہے اور امید ہے کہ ان کا نام آپ کو اس سال بار بار سننے کو ملے گا. اشوک کمار, بی بی سی دلی.
بڑھ بولے ٹرمپ کا جلوہ. اور اب چلتے چلتے وشو سماچار ایک بار پھر.
बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण की दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की है। इराकी विदेश मंत्री इब्राहिम अल जफारी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब में चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए उनका देश मध्यवर्ती की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कोको कोला कंपनी ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर दिए अपने एक इश्तेहार पर रूस और यूक्रेन के लोगों से माफी मांगी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।